नमस्ते साथियों, ये है आपका अपना कार्यक्रम गांव आजीविका और हम, जहां हम और आप सुनते हैं खेती और आजीविका से जुड़ी जानकारियां। इस कार्यक्रम में आज हमारे साथ है प्रदान संस्था के कृषि विशेषज्ञ जीप दास साहू, जो आज हमें बता रहे हैं हमारे देश में एल नीनो का प्रभाव खेती पर कैसे पड़ता है और एल नीनो के प्रभाव से बचने के लिए किसान भाइयों को क्या क्या करना चाहिए। तो चलिए सुनते हैं।
बारिश शुरू हो जाने का समय ऑलरेडी आ गया है, तो इस साल बहुत चर्चित हो रहा है कि बरसात में पानी कम होगा, नियम मान के बारिश नहीं देगा, एल नीनो के कारण ये सब कुछ हो रहा है। तो पहले मैंने आप लोगों को बताते हैं कि क्या होता है जिस साल ये एल नीनो का घटना होते हैं। तो पहला तो बात ये है कि हमारा मानसून वायु, जो कि हमारा देश में बादल लेकर आते हैं समुद्र से, जो बादल है उस एरिया से बादल को लेकर आते हैं और हमारा देश के अंदर में बारिश देते हैं। तो जिस साल एल नीनो होता है उस साल ये क्या करते हैं कि हमारा जो बादल देश में होता है, हमारे देश में उसको जो लेके आता है मानसून वायु, उसका गति को बदल देता है, उसका गति को धीमी कर देता है। दूसरा है कि जितना बारिश होना था उससे कम बारिश देता है, इसके चलते एल नीनो के चलते। तीसरा है जून जुलाई अगस्त महीना में, एक एक महीना में जितना जितना करके बारिश को बांटना था उसका परिमाण को भी ये उलटफेर कर देता है। जून महीने में जितना देना था वो अगस्त महीने में दे देता है, या अगस्त महीने में जितना देना था वो जून महीने में दे देता है, इस तरह का उलटफेर करता है। पानी ठीक से नहीं हुआ तो किसान का फसल मर जाता है, जालमाल को जो खाने के लिए पुआल भूसा जरूरत है वो नहीं मिलता है, तो आने वाले अगले साल में चारा का कमी हो जाता है, तो ये जालमाल का भी प्राण हानि होता है। तो बारिश के ऊपर एल नीनो का इतना बड़ा प्रभाव अगर पड़ता है तो किसान को क्या क्या करना चाहिए खेती और जालमाल बचाने के लिए। मोटा मोटा शब्द में आप लोग को मैं बोल के रखता हूँ कि आप लोगों को क्या क्या करना चाहिए। एक तो है नॉर्मल साल में, सामान्य जिन साल बारिश होता है उस साल में आप जितना बीज का जोगान रखते हैं उससे ज्यादा रखिए, क्योंकि एक बार लगाया उसके बाद 15 दिन बारिश नहीं हुआ तो बीज अगर मर गया तो फिर आपको दोबारा लगाना पड़ सकता है। दूसरा है बीजरा को एक साथ में आप तैयार मत कीजिए, 7 दिन 10 दिन बाद जमीन तैयार कीजिए और बीज फेंकिए, बीजरा बनाइए, ताकि एक ठो बीजरा नष्ट हो गया तो दूसरा को आप लगा सकते हैं। तीसरा है जल्दी पकने वाला किस्म, जो भी फसल लगा रहे हैं उसका जल्दी पकने वाला किस्म को, कम दिन वाला जो कम दिन में पक जाते हैं उस तरह का किस्म वेराइटी को आप लगाइए। चौथा है पोखरा कुआं तालाब जो भी आपके गांव में है, जो भी बारिश हो रहा है उस बारिश का पानी को उसमें घुसा दीजिए ताकि वो भरा रहे, जिस समय पानी का कमी होगा उस समय इस पोखरा कुआं से पानी उठा करके आप सिंचाई दे सकते हैं। पांच नंबर, एक फसल जो लगाते हैं उसके जगह में आप मिश्रित फसल लगाइए या अंतर्वर्ती फसल लगाइए, इंटरक्रॉप। देसी बीज अगर है तो उसको लगाना ही इस बार आपका बुद्धिमत्ता का काम होगा, क्योंकि हाइब्रिड बीज लगाने से अगर पानी का कम हो गया, सिंचाई कम हो गया तो फलन बहुत कम होगा। सात नंबर, ज्यादा से ज्यादा गोबर खाद, FOM, सड़ा हुआ पत्ता, पोखरा का पांक, ये सब जमीन में आप प्रयोग कीजिए, इससे जमीन में पानी धारण क्षमता बढ़ जाता है और ज्यादा दिन का अंतराल में आपको सिंचाई मांगेगा, बहुत जल्दी जल्दी सिंचाई ये नहीं मांगेगा। आठवां है बारिश संबंधित जो समाचार आपको रेडियो में, टीवी में, यूट्यूब में देखने मिलता है, इसके साथ आप अवगत रहिए, क्योंकि उसके अनुसार आपको बदलना पड़ेगा आपका डिसीजन। नौवां है रोपने के जगह में आप DSR लगाइए। और दसवां नंबर जो है कि आप मिलेट का खेती ज्यादा ज्यादा एरिया में कीजिए, ठीक है। तो इतना ही आज के लिए हम बताता हूँ।
साथियों, अगर आज के विषय से जुड़े आपके कोई सवाल है तो अपने फोन में नंबर 3 दबाकर अपने सवाल जरूर रिकॉर्ड करें। धन्यवाद।